ओम शांति। माइंड मैटर्स की इस श्रृंखला में हमने मन को तो समझा है, लेकिन उसके साथ साथ जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी समस्याएं हैं, उनको भी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। हमने जाना कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कितनी सारी और बीमारियों की तरफ हमें लेकर जा सकती है। सुसाइड के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। क्या है ये डिसऑर्डर, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इसे जो है हम ठीक कर सकते हैं या इसके साथ जिया जा सकता है। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
डॉक्टर शर्मा, अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, क्या है ये डिसऑर्डर और किस उम्र में जो है लोगों को हो सकता है?
बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली मूड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। हम में से हर किसी व्यक्ति का सेम मूड फॉरएवर इन लाइफ तो रहता नहीं है। कभी हम थोड़ा सा डाउन महसूस करते हैं इमोशनली, कभी हम थोड़ा सा खुशी महसूस करते हैं। कुछ लोगों में वो बाहर की सिचुएशन से रिलेटेड होता है, कुछ अच्छी चीज़ हुई जिसको इंटरप्रेट हम करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव बात है, कुछ देर के लिए हम खुश रह सकते हैं, या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई, कुछ देर के लिए हम थोड़ा डाउन हो सकते हैं। ये या तो सिचुएशन से रिलेटेड है, या थोड़े घंटों के लिए हम थोड़ा सा डाउन महसूस किए, थोड़ा सा अच्छा महसूस किया और उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन अगर वही मूड एक ही तरह का और नॉर्मल से कहीं ज़्यादा एंड इन कंपैरिजन टू योर सेल्फ जो कि पहले थे उससे, या दूसरों के कंपैरिजन में उसी सिचुएशन में बहुत अधिक है, चाहे वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन सिर्फ मूड नहीं, डिप्रेशन से जुड़ी और चीज़ें भी, जीवन को देख पाने का तरीका, फ्यूचर के बारे में सोच पाने का तरीका, बॉडी के जिनको हम फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स कहते हैं, नींद, भूख, वेट रेगुलेशंस, दूसरों के साथ संबंध, ये सब अगर कम हो जाते हैं, और कुछ स्पेशल चीज़ें, यानी आपको लगता है कि ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको लगता है कि ये ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है, चीज़ें खराब ही होंगी, कभी ठीक ही नहीं हो पाती, या आपको किसी छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी बहुत गिल्ट महसूस होती है, तो वो एक डिप्रेशन का एपिसोड है। ख़ास तौर पे अगर वो 2 हफ्तों से ज़्यादा लगातार चल रहा है और उसकी वजह से आपके संबंधों पर, आपकी दिनचर्या पर और आपके काम करने की क्षमता पर असर पड़ रहा। दूसरा इसका पोल है जिसको कि हम पोल ऑफ एक्साइटमेंट या मैनिया कहते हैं, जिसमें कि बिना कारण के मूड बहुत खुश है, आपको ऐसे लगता है यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए नहीं, कई दिनों तक नींद की ज़रूरत कम हो जाती है, आप अपने आप को बहुत स्पेशल व्यक्ति महसूस करना शुरू कर देते हैं और उसी कारण से कई तरह के रिस्क लेने शुरू कर देते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चना शुरू कर देते हैं, बोलना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, संबंधों को ये समझ गए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ ख़राब करना शुरू कर देते हैं, या क्योंकि आपने बहुत जल्दी कोई इमीडिएट इम्पल्सिव डिसीजन लिए तो उसकी वजह से आपके काम के ऊपर असर पड़ा, और ये अगर बहुत ज़्यादा देर तक चलता है, एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, तो ये फेज़ ऑफ मेनिया है। कुछ व्यक्तियों में ये जो डिप्रेशन है और ये जो मेनिया है, ये ऑल्टरनेटिवली आता है, कभी एक आया, कुछ दिनों बाद दूसरा आया, कुछ में डिप्रेशन के ही कई एपिसोड चलते हैं और फिर मेनिया के एपिसोड शुरू हो जाते हैं, बहुत कम लोगों में सिर्फ मेनिया के एपिसोड चलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन चल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड मेनिया चल रहा है या अल्टरनेट चल रहा है, तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर माना जाता है। ज़रूरी इसलिए है कि आमतौर पे ये एडोलेसेंस में आता है, जिनमें कि वैसे भी थोड़े से
एनर्जी लेवल
फ्लक्चुएट होते हैं, कोई रिलेशनशिप ख़राब हुई तो कुछ दिनों के लिए वो व्यक्ति समझता है कि अरे
सब कुछ
ख़त्म हो गया, या कोई अच्छी खबर आई, किसी अच्छे कॉलेज में आपकी एडमिशन हो गया तो आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे महसूस कर रहे हैं। इसी दौरान में कई बार कुछ बच्चे खास तरह की, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ है, स्पेशली टबैको है या अल्कोहल है, उसका भी सेवन करते हैं और उसकी वजह से भी ये एपिसोड्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी समझने की बात है कि कारण कोई भी हो, अगर हो रहा है तो उसका निवारण करने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग कारण में ही फंस जाते हैं, क्यों वो तो सिंगल पेरेंट फैमिली से है, या उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या पिछले एग्जाम्स में उसके नंबर अच्छे नहीं आए, या उसके घर वाले बहुत खुश हैं, उसको बहुत चीज़ें देते हैं तो इसलिए वो एक्साइटेड रहता है हमेशा। अगर हो रहा है जो भी उसका कारण और परसीव्ड कारण हो, उसको कुछ देर के लिए अलग रख लें और उस व्यक्ति की मदद करें उस चीज़ से बाहर निकलने में। अगर हम मान लीजिए व्यक्ति की मदद नहीं करते, तो जब वो एक्साइटमेंट के फेज़ में गया है तो उस फेज़ में उसने इतनी गलतियाँ की हैं या इतने संबंध खराब हुए हैं, और उसके बाद जब वो नॉर्मलसी में आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो सोच के ही वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। उसकी टेंडेंसी भी है, लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ और इस दौरान में आप कई बार अपने दोस्तों को खो देते हैं, घर वालों के साथ अनबन हो जाती है या काम छूट जाते हैं, तो उस वजह से लोगों में डिप्रेशन का फेज शुरू हो जाता है और फिर वही चलता रहता है। लेकिन एक और चीज़ है कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल हैं, तो अगर थोड़ा सा भी डिप्रेशन आए, थोड़े दिन के लिए आए, लेकिन व्यक्ति काम कर रहा है, व्यक्ति थोड़ा सा खुश है, इसका मतलब बाइपोलर नहीं है।
यहाँ डॉक्टर शर्मा यही बात कि हम ये मानते हैं जिस उम्र की आपने बात की वो फेज़ माना जाता है, फेज़ है निकल जाएगा, या बाइपोलर डिसऑर्डर हैज़ टू बी ट्रीटेड, हैज़ टू बी लुक्ड अपॉन यू नो बाय अ स्पेशलिस्ट, क्या ज़रूरी है?
हम देखते हैं कि इस दौरान में थोड़ा बहुत आज के समय में ऊपर नीचे इंसान चलता रहता है, लेकिन उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी नहीं रुकती, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती, आपकी नींद नहीं खराब होती, आपका लोगों से संबंध नहीं खराब होता, आप नॉर्मल बातें नहीं करते। अगर वो हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि ये नॉर्मल एडोलेसेंट क्राइसिस
नहीं,
जिसको बोलते हैं, उससे ज़्यादा है। ज़रूरी चीज़ ये देखने की है कि एक या दो सिम्टम्स डज नॉट डिफाइन इट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च रहा है, या किसी व्यक्ति की नींद थोड़ी सी कम हुई है, या कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए जानने वाले के सामने थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेडली बात कर रहा है, या कोई अच्छी चीज़ हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी उस दौरान में कुछ घंटों के लिए या एक दो दिन के लिए हुआ है, वो बाइपोलर नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों का इकट्ठा होना, ज़्यादातर चीज़ों का इकट्ठा होना, जो उसका पहले से बिहेवियर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होना या उसका कई गुना ज़्यादा हो जाना, और ये सडनली आना, ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के अंदर आ जाना, और अगर बाहरी कोई कारण है ही नहीं और फिर भी शुरू हो जाना, और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के हर चीज़ पे असर आना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है 18-19 साल का, वो अचानक माँ बाप से लड़ना शुरू कर देता, लेकिन बाकी लोगों के साथ ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एक्साइटेडली बात करता है, पर बाकियों के साथ ठीक है, कुछ दिनों से पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है बट बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो उसे एक्साइटमेंट नहीं कहेंगे। या कुछ कारणों से किसी व्यक्ति के साथ वो थोड़ा सा रिजर्व्ड है या थोड़ा सा चुप हो जाता है, उस वजह से उसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे। जहाँ पे ये सारी चीज़ें इकट्ठी आएँ, एक से ज़्यादा सिचुएशन में आएँ, काफ़ी देर के लिए रहें और उसकी प्रीवियस फंक्शनिंग से बिल्कुल अलग हों, और अगर मान लीजिए कभी बहुत डाउन है और कभी बहुत अप है, कभी बहुत एक्साइटेड हैं कभी बहुत उदास हैं, तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इस चीज़ को बाइपोलर डिसऑर्डर समझ के चला जाए। फैमिलीज़ को कई बार मुश्किल ये आती है कि धक्का लगता है कि उनका बेटा या बेटी जो अभी तक बहुत ठीक थे, अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, सीमिंगली नॉर्मल थे, अचानक उसके बिहेवियर में चेंज आया, अब उसको संभालें कैसे, या उसको कैसे कह दें कि आपके बिहेवियर में चेंज है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फैमिलीज़ की अपनी जो या तो गिल्ट है कई बार, या कई बार डिनायल है, उसकी वजह से भी व्यक्ति को सही समय पर सही हेल्प नहीं मिल सकती।
सही समय क्या है हेल्प का? कैन वी अफोर्ड टू वेट?
राइट टाइम इज जल्द से जल्द। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को चलने देते हैं तो उस उम्र में खास तौर पे, मान लीजिए एक महीने का गैप पड़ जाता है पढ़ाई में, तो उसको फिर से पिकअप करना बड़ा मुश्किल है। जॉब में आपने जॉब शुरू किया, एक महीने तक आप काम पे नहीं गए तो छूट जाएगी, या संबंधों में परिवार में उस चीज़ को फिर से वापस बनाने में बड़ा मुश्किल होगा सबके लिए। एट द अर्लीस्ट एक चीज़ को समझें कि कुछ चीज़ ठीक नहीं है, ये पहला स्टेप है। जिसमें कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, डिनाई नहीं किया, उसके बाद देखा कि किस किस चीज़ में ऐसा हो रहा है, आंकलन करें। उसके लिए अगर आपको उस व्यक्ति से, उस बच्चे से बात भी करनी पड़े, उसके साथ बैठ के क्या क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, आप या आपका कोई जानने वाला, ये समझने की कोशिश करें। और मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट यानी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है, जो उन सब चीज़ों को पूछ के, और कई बार परिवार में एक कई बार रिश्ता ऐसा होता है या पर्दा ऐसा होता है कि वो खुल के अपनी बात को नहीं कह सकते, तो क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, दूसरा व्यक्ति जो प्रोफेशनल है वो उस चीज़ को जल्दी एड्रेस कर सकता है, और वो पता भी कर सकता है कि क्या हो रहा है और क्या ये एक तरह की प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा चलता जाएगा उतना सिम्टम्स भी फ्यूचर के लिए बढ़ेंगे, और जितनी बार एपिसोड्स होंगे आने के चांसेस फ्यूचर में भी बढ़ेंगे, और उनको जल्दी ठीक होना भी ज़्यादा मुश्किल होगा।
सर शिवानी, ये बहुत बड़ी बात है एक परिवार के लिए। पहली चीज़ पेरेंट्स की भी या रिलेटिव्स की भी डिनायल है, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस है, उसके बाद पहला जो आता है थॉट वो ये, ज़्यादातर हम सब कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है क्योंकि उम्र वो है, या फिर दबा दो, जितना इसको अंदर रखो या कुछ करो, वो जो पूरा पहला थॉट आता ही नहीं कि हम डॉक्टर के पास लेकर जाएं।
वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे घर में एक फैमिली मेम्बर, एंड मे बी जैसे कहा कि बच्चा हो सकता है, इज़ नॉट वेल। एंड यू नो, मे बी हमें ये सारे साइंस नहीं दिखाई दें, लेकिन अगर हमें थोड़े दिन के लिए भी लगता है कि बिहेवियर पहले जैसा नहीं है, या तो चुप है, उदास है, या फिर ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, और जो सारी बातें बताई, अगर 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, लेट्स लुक एट इट लाइक अनदर पेन। यू नो, अगर मेरे बॉडी के किसी ऑर्गन में एक दर्द हो रहा है, हम 2 दिन उसको इग्नोर करते हैं, 5 दिन इग्नोर करते हैं, 15 दिन हो गए, हम जाएंगे ही ना डॉक्टर के पास, या चलो मैं खुद नहीं जाऊँ तो कोई ना कोई फैमिली में कहेगा कि नहीं, इट्स बीन टू लॉन्ग, 15 दिन से तुम्हारा ये हो रहा है, वो सीधा मुझे स्कैन या सर्जरी के लिए नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक कंसल्टेशन के लिए तो लेके जाएंगे, देन लीव इट टू द डॉक्टर टू डिसाइड। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द डायग्नोसिस योर सेल्फ कि ये किसी ने किया है, या ये कुछ और है, या ये कोई संघ का असर है, या ये अच्छा बीमारी तो वी हैड नेवर थॉट ओनली, एक्चुअली दैट वॉज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन ओनली, हमने यही सारे ऑप्शन सोचे, एंड द ईजिएस्ट थिंग टू से वॉज बिगड़ गया, यू नो, अभी दोस्त ऐसे मिल गए, जब से कॉलेज में गया है तब से ऐसे होने लग गया। बट आई थिंक अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वी विल बी एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन जस्ट बिगड़ गया सिंपल एंड समथिंग लाइक दिस विच इज़ नॉट नॉर्मल। जस्ट टू कीप योर माइंड एट रेस्ट एंड जस्ट टू नॉट लेट इट इंक्रीज, जस्ट वन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर, यू नो, इतना करने के लिए हमें सोचने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिन इफ समवन इज नॉट वेल एंड एवरी डे दे लूजिंग आउट ऑन टाइम, इवन 15 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, तो हमारी इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, अब इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, परिवार की इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बीमारी बढ़ती जाएगी, एंड उसकी फिर आगे उसको फेस करने की, कोप करने की पावर वो कम होती जाएगी, जस्ट बिकॉज हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। कई हमारे पास लोग आते हैं जो एक्चुअल जो व्यक्ति है वो रेडी नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, सो द फैमिली जस्ट कम्स एंड सेज, लेकिन वो तो रेडी ही नहीं है, तो कैसे लेके जाएंगे उसको, वो तो रेडी ही नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। वो रेडी नहीं है, हम जा सकते हैं, एंड यू नो व्हाट वी कुड डू इज राइट डाउन एवरीथिंग, सब कुछ, क्योंकि भूल ना जाए हमें, पूरी उसकी सारा कुछ लिखकर हम अकेले डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर ही हमें बताएगा कि हमें अब क्या करना है। वी कांट वेस्ट टाइम सेइंग कि वो रेडी नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है, तो वो रेडी क्यों होगा डॉक्टर के पास जाए। सपोज समबडी इज इन दिस मेनिया स्टेज एक्साइटेड, यू कांट टेल हिम कि यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, ही विल से आई एम मोर हैप्पी देन आई हैव एवर बीन बिफोर, सो व्हाई वुड आई फाइंड द नीड टू गो टू अ डॉक्टर, but then the family needs to go to a doctor. So I think let's not waste a single day.
ये जो पूरा एक mindset है, ये जो fear of psychiatrist और psychologist, ये अभी तक भी हमारे मन से नहीं निकल पाया है. What is it we need to do?
जो stigma रहा है psychiatrist या psychologist के पास जाने में, या किसी तरह की intervention करवाने में, सिर्फ medicine ही नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि आज से कुछ साल पहले तक, 20-25 साल पहले तक भी अगर देखें तो हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम थे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत बहुत कम थे, तो इतनी जल्दी नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्कूल काउंसलर्स ये तो हैं ही। उसी के साथ साथ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बढ़ी हैं, सिर्फ मेडिसन्स की नहीं लेकिन काउंसलिंग की, अपने आप को बदल पाने की, और यहाँ पर अपने जीवन को फ्यूचर में सही रूप से चला पाने की। क्योंकि इसमें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसका इलाज है, अगर नहीं भी है तो बहुत अच्छा है, पता लग गया कि नहीं है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम तो है ना जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं या परिवार स्ट्रेस में है, अगर उसे नहीं ठीक करेंगे तो वो भी तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो और तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि लोग बाहर के कारण ढूंढते रहते हैं, ऊपरी के जादू करवा दिया, ग्रह खराब हैं वगैरह वगैरह, कारण कोई भी हो, अब इस समय में अब अगर बुखार है, चाहे मलेरिया से है, चाहे टाइफाइड से है, चाहे सर्दी जुकाम से है, बुखार का तो इलाज कराना है ना। तो वो कारण जो भी रहे हो, जब सिम्टम्स हैं तो उनको ठीक करने की ज़रूरत हो जानी चाहिए। डर लोगों को सबसे बड़ा एक्चुअली एक तो ये रहता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की बेसिक ट्रेनिंग ये है कि वो इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस ना करें, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ मेंटेन्ड। दूसरा, लोगों को डर होता है कि अगर उनका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी आगे कैसे चला पाएंगे। तो जब आप किसी के पास गए तो आप अपने आप को भी कह रहे हैं कि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है, लेकिन माइंड को कंट्रोल करने के तरीके भी तो हैं, वो तरीके भी तो आपको बताए जा सकते हैं। और उससे सिर्फ उसी समय नहीं, आने वाले समय में स्ट्रेसेस में कैसे हमने डिप्रेशन में या मेनिया में नहीं जाना, इससे बचने का भी तरीका उसी समय में डिस्कस हो सकता है। प्लस अगर परिवार में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं या वो व्यक्ति बाहर के कुछ स्ट्रेसेस को महसूस कर रहा है तो उसी समय उसको अगर ठीक करेंगे तो वो आगे बढ़ने से पहले ही कम हो जाएंगे। कई बार ये भी होता है कि अच्छा इस समय छोड़ दो, शादीवादी हो जाएगी, काम में लग जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो एक बड़े स्ट्रेसेस है। अगर कोई व्यक्ति छोटे स्ट्रेसेस को इस समय नहीं संभाल पा रहा तो बड़ों को कैसे संभाल पाएगा। तो उसके लिए उसको प्रिपरेशन करने के लिए भी तो मदद करने की ज़रूरत है।
इलाज में क्या कुछ शामिल है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स के सामने आता है। क्या उसका लाइफ लॉन्ग है इलाज जो चलेगा, या कुछ समय के लिए होता है, क्या कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए?
एक सबसे बड़ी बात जो कि हम प्रॉब्लम को अगर लंबा खींचने देते हैं तो उसमें ये होता है कि जितना लंबा खींची है उतना लंबा ही शायद उसका इलाज हो। एक एपिसोड हुआ, आया, चला गया, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड हो, लेकिन अगर सेकंड होता है तो फिर फ्यूचर में आने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाते हैं। थर्ड एपिसोड है तो फिर फ्यूचर में आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% बढ़ जाते हैं, और अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो वो आएगा ही, इसीलिए भी उसको जल्दी मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। एक एपिसोड 3 से 9 महीने एवरेज अगर ट्रू बाइपोलर है तो चलता है, और कुछ व्यक्तियों में कम देर के लिए, कुछ में ज़्यादा देर के लिए। तो पहले कितने देर सिम्टम रहे हैं उसके इलाज डिसाइड करता है कि कितनी देर के लिए दवाई होगी। बाइपोलर में अगर डिप्रेशन भी है और एक्साइटमेंट भी है तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए अलग तरह की, अगर हम मेडिसन्स की बात कर रहे हैं तो मेडिसन्स चाहिए हों ताकि फ्यूचर में आने से इसको रोका जा सके। सिर्फ उस समय के लिए ठीक नहीं करना, लेकिन फ्यूचर में आने से रोका जा सके। उसी के साथ जिसे हम साइको एजुकेशन कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप समझ पाए कि मेरे ये सिम्टम्स हैं, इन तरह की चीज़ों से मुझे कष्ट होता है, इन तरह की चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, और लाइफस्टाइल में अगर बहुत इरेटिक है आपका सोना, खाना, जागना, बहुत लास्ट मिनट पे आप प्रेशर्स से डील नहीं करते हो और उनको बहुत बड़ा होने देते हो, या आप दुनिया से कट के हो, कोई आपका दोस्त नहीं है, या अल्कोहल या दूसरी ड्रग्स का आप सेवन करते हैं जो कि इन चीज़ों को प्रेसिपिटेट करती हैं, तो फिर आप ये भी सीख जाएंगे कि फ्यूचर में अब इससे मुझे बचने की ज़रूरत है। ये डिसाइड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसन्स हो या उसकी वजह से वो नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते। ऐसा भी देखा जाता है कि वो लोग जो कि बहुत हाई पोजीशंस में हैं, वो भी इस तरह के एपिसोड से गुजरते हैं, इंक्लूडिंग इन स्पिरिचुअल फील्ड, इंक्लूडिंग इन पॉलिटिक्स, इंक्लूडिंग इन मेडिसिंस। जो लोग बहुत हाई अचीवर्स हैं उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है, और क्योंकि वो उस समय पोजीशन ऑफ पावर में है तो कई बार ये चीज़ समझ ही नहीं आती, उनको कोई कहने वाला भी नहीं होता और वो चीज़ निकल जाती है। लेकिन उनके लिए भी अगर वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से, नॉर्मल आउटपुट से, नॉर्मल तरीके से चीज़ों को करने से हट गए हैं अचानक ही, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पर या उनके आसपास वालों की ज़िंदगी पर असर आ रहा है, तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, उसके लिए उनको ज़रूर मदद की ज़रूरत है।
जैसा कि डॉक्टर अवधेश शर्मा ने कहा कि हाई पोजीशन पे हैं, यू नो, या कोई बच्चा है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, सडनली ये रियलाइजेशन कि मेरी अपनी इमोशंस मेरे अपने हाथ में नहीं है, यू नो, लाइक आई हैव नो कंट्रोल, वो एक डिप्रेसिव भी हो सकता है, जो आपने कहा कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एंड एक्सेप्टेंस, फैमिली की एक्सेप्टेंस एंड यू नो पेशेंट की खुद की एक्सेप्टेंस, उसको वो क्या तरीका करें कि वो एक्सेप्ट कर पाए उस चीज़ को?
मुश्किल इसलिए लगता है बिकॉज वी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें लगता है लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन, यू नो, आई विल नॉट बी व्हाट आई वांटेड टू बी, द फैमिली विल फील दैट ही और शी विल नॉट बी द वे,
फेलियर
भी लगता है लेकिन फ्यूचर भी ब्लीक लगता है ना। एक है आपका प्रेजेंट में कि हम फेल हुए, आगे भविष्य क्या है, वेदर इट्स अ करियर और वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और वेदर इट्स अ फैमिली। लेकिन जब हम ये सब सुनते हैं और लोगों से भी मिलते हैं, आज हम भी बहुत लोगों से मिल रहे होंगे हु आर अचीवर्स, हु आर, जैसे कहा, बहुत बड़ी पोजिशन में, हमें नहीं पता होगा कि दे आर टेकिंग मेडिसिन फॉर समथिंग लाइक दिस, दे आर सो नॉर्मल, वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ, नॉर्मल रिश्ते, नॉर्मल अपना करियर सब कुछ कर रहे हैं, साथ में एक दवाई खा रहे हैं, सो वॉट। तो क्या हमें से कौन है जो बिना किसी एक दवाई के, किसी को ब्लड प्रेशर की है, किसी को इसकी है, किसी को इसकी है, किसी को इसकी है, जो हम डरते हैं ना कि शायद इसकी दवाई पता नहीं कितने टाइम चलेगी, पता नहीं इसका, अगर सपोज दवाई थोड़ा टाइम ज़्यादा भी चलती है, चलो 2 साल 5 साल, वर्स्ट केस सपोज हमेशा भी, तो क्या हुआ, मुझे यही करना पड़ रहा ना कि मुझे एक दवा लेनी पड़ रही है जिससे लाइफ विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब हम बीपी की दवा लेते हैं तब भी तो हमें डॉक्टर ये कहता है अब आपको शायद ये हमेशा ही लेनी पड़ेगी, बाकी आप अपना ध्यान रखना, ये बढ़े नहीं, ठीक है, सेम लाइक दैट। But they are amongst us and they are achieving, they are working, they are traveling, they are doing everything fine. तो जितना हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, लोगों से ऐसे मिलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, we'll realize कि it's okay. हम सब वो करने वाले हैं जो हमने सोचा था कि हम करेंगे, सिर्फ फर्क ये है अब हम ध्यान रख के करेंगे, यू नो, अब हम नहीं अपने आप को कोई ऐसी सिचुएशन में आने देंगे जिससे हमें स्ट्रेस क्रिएट हो, या हमारा जो पुराना पैटर्न ऑफ थिंकिंग था जो इसको ट्रिगर कर सकता है, हम उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो रेस्ट लाइफ विल बी द सेम, मे बी समथिंग इवन बेटर देन वॉट वी हैड प्लान्ड, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू लीड लाइफ इन अ मोर केयरफुल मैनर। सिर्फ एक थोड़ा सा हम ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं, बहुत आते हैं आजकल, जब उनकी मैरिज की बात आती है, मैनी पीपल हाइड दिस थिंग, यू नो, ये सोच के कि हुआ था या दवाई ले भी रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे करने से तो फिर रिश्ता जुड़ेगा नहीं, तो छुपा देते हैं। बट वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ जिनका फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आती है, यू नो, देन अ लॉट ऑफ मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड, जो स्पाउस आ गए क्योंकि उनको पता नहीं था, तो इट कम्स कि मेरे साथ चीटिंग हुई, यू नो, सो मैनी अदर, फिर फैमिलीज, एंड बहुत सारे केसेस में जो नहीं होना चाहिए था वो फिर डिवोर्स की तरफ बात जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ द इलनेस बट बिकॉज ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिफोर, यू नो, दीज आर सर्टेन थिंग्स कि हमें डॉक्टर से बात करके, वो हमें जैसे गाइड करे, हमें इंफॉर्मेशन छुपा कर नहीं, जहाँ आपकी जॉब की बात है आप नहीं भी बताते हैं तो इट डजेंट मैटर बिकॉज आप डिलीवर कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आपकी रिश्तों की बात है, जहाँ आप छुपा नहीं सकते, इनफैक्ट आपके स्पाउस को बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ पता होना क्योंकि वो आपका ध्यान रखेंगे आगे, तो वो चीज़ नहीं करें, बिकॉज आई हैव सीन उसकी वजह से पार्टनर पे इफेक्ट आएगा, लेकिन जिसको वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसको फिर वो जो एडिशनल स्ट्रेस आएगा उसकी वजह से फिर वो बीमारी और प्रेसिपिटेट होती है. तो वी नीड टू टेक केयर कि जैसे कोई और चीज़ नहीं छुपाई जानी चाहिए ऐसे टाइम पे, ये चीज़ तो डेफिनेटली नहीं छुपानी चाहिए. कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उस व्यक्ति को और जीवन में ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस से गुजरना पड़े, तो फिर हो सकता है उसको फिर कभी भी नहीं होगी ये बात, एंड लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल.
सिस्टर शिवानी ने कहा कि उन लोगों से मिलते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इन पैटर्न्स को समझ लिया है कि कुछ देर के लिए ठीक नहीं थे, उसके बाद नॉर्मल रहे. अब अगली बार अगर होने वाला है तो उससे पहले ही वो ध्यान रखना पूरा शुरू कर लेते हैं या वहाँ पे पहुँचने नहीं देते अपना. एक्चुअली देखा जाए तो हम में से हर किसी को, चाहे वो कोई फिजिकल इलनेस हो, उस समय हम तो नहीं कहते ना कि तुम्हारी गलती से तुम्हें डायबिटीज हुई, यहाँ पे हम कहते हैं तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ या तुमने ध्यान नहीं रखा. Whereas this is something that can happen to anyone, and at the same time, with proper precautions, it can be handled by anyone. तो अगर ये चीज को ध्यान में रखते हैं तो आप एक नॉर्मल जिंदगी पूरी तरह से जी सकते हैं. हाँ, कई बार अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी एक क्लियर है कि मान लीजिए मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं हूँ और मैं रोज लॉन्ग डिस्टेंस रनर करने की प्रैक्टिस करता हूँ, तो किसी दिन शायद हार्ट अटैक के साथ गिर जाऊँगा. तो जो मेरी क्षमता है मैं उसके हिसाब से चलूँ, उसको बैलेंस करके रखूँ. अगर वो करके रखूँगा तो शायद फ्यूचर के एपिसोड्स को भी मैं बचा सकूँ.
चलते चलते बात ये कि जो डॉक्टर से कंसल्टेंसी है वो कितने वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें लगा अब ठीक हुआ तो हम अपने आप ही दवाई को भी करते रहते हैं, अपने आप ही अपनी काउंसलिंग करते हैं, देन वी से कि वी आर फाइन नाउ. बट ये जो प्रॉब्लम है इसमें जो रिलेशनशिप है वो कितना लंबा साथ चलना चाहिए?
शुरू में शायद ज़्यादा जल्दी मिलने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है एवरी वीक. जैसे जैसे बेटर होते जाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है. अगर बिल्कुल रेगुलर मेडिसिन चल रही है तो शायद महीने से दो से तीन महीने में भी एक बार, जिस दौरान में आप खुद और डॉक्टर के साथ मिलकर आंकलन करते हैं कि जीवन ठीक चल रहा है, किसी भी तरह के बादल नहीं दिख रहे हैं, मैं आगे ये प्लान कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से इकट्ठी एक ऑब्जेक्टिव व्यक्ति के साथ जो आपको जानता है, प्लस मेडिसिन्स के लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो आप अपने आप ही अगर ले रहे हैं या जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो कुछ और बीमारियाँ हुई, उसमें इन मेडिसिन्स का कितना रोल है, तो वो सब आंकलन करने के लिए भी डॉक्टर के साथ एक लगातार रिश्ता बनाए रखने की लंबे अरसे तक, जब तक एटलीस्ट दवाइयाँ चल रही हैं और स्टेबलाइज नहीं है, वो ज़रूरत है.
डॉक्टर अवधेश शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच आज की पूरी बातचीत के लिए.
बाइपोलर डिसऑर्डर इज व्हेन आवर माइंड कैन गो टू टू एक्सट्रीम पोल्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. वन पोल इज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड एटीट्यूड of hopelessness towards life and relationships. The second pole is pole of excitement or mania. For some people, the phase of depression and phase of mania may come alternately. Some may experience repeated episodes of depression and then episodes of mania. Few may experience only episodes of mania. If someone experiences either pole for more than 2 weeks, then they need treatment immediately. Early intervention is extremely important. If there is only one episode and gets treated timely, it may never happen again. But if there are two or more episodes, then the possibility of it happening again will increase. One episode may last from 3 to 9 months.